جو حضرات بیان میں شریک ہونا چاہتے ہیں قریب تشریف لے آئے. مجلس کے آداب میں سے ہیں کہ مل مل کر بیٹھے اور اپنے کو ہم سب محتاج ہیں. دور دور بیٹھنا اس میں اسلام کا خطرہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ضرورت مند سمجھ کے ہم بیٹھے اللہ کی محبت کی باتیں اللہ کی دین کی باتیں قدر و منزلت کے ساتھ سننا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا فائدہ تھا کہ مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حاضر ہوتے تو مل مل کر بیٹھتے تھے اور اتنا مل جاتے اور اتنا ساکت بیٹھتے تھے کہ اگر زیادہ ڈال دو تو کہیں ہم نہ آئے اور پرندہ بیٹھ جائے ساکت سے. جس قدر اتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. انسان جتنا اللہ کو راضی کرنے کی اسی کی کوشش اور جستجو کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر اتنی ہی مہربانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنا ہے اور شریعت اور سنت کی قدر و قیمت ہم سب کو نصیب کرنا ہے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا
لوگوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے اس کو
جسمانی صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے، اجازت نہیں کی تصویریں بنانے کی. اور خود حضرت مولانا سبز عثمانی صاحب اپنی مجالس کے اندر اس کا رد کرتے ہیں اور منع فرماتے ہیں. جو تصویر کشی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویر بنانے والوں کو، کہ یہ کام کھول کر تم نے میں بھی اور سب دوست تصویر کشی سے اجتناب ضروری ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کرتا اور تصویر ہوگی، جس گھر میں بھائی آپ یہاں توجہ رکھیں، بھائی صاحب بھائی آپ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے کوئی بات نہیں، یہ غیر مقلف ہوتے ہیں، اگر کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچائیں تو اس کو آپ سر سے نظر کیجیے. ہاں چھوٹے بچے پھول کی مانے ہیں، چھوٹے بچے جو بالکل نہ سمجھ لوں ان کو مسجد میں لانا منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، باقی ناپاکی کی سمجھ نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ نماز میں جائے سے نکل کے گزر چل جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، روٹے لگتے ہیں، تو ایسے چھوٹے بچے جو نہ سمجھ لوں ان کو مسجد میں نہ لانا چاہیے، اور جو آ جائے تو ان سے گرمی مشرق ہو جاتی ہے. کیا بات ہو رہی تھی کہ جس گھر کے اندر تصویر اور کتنا ہوگا، پر میں نظر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو آج ہمارے گھروں میں ذرا ہم نظر ڈالیں کہ کتنی تصویریں ہیں، کتنے گھر ہماری تصویروں سے پاک ہیں. آج ہمارے اندر یہ بات ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں اور بڑے بڑے پروفیسروں کے مقولوں کی تو بہت ہم کو فکر ہے اور ان کا یقین ہے اور ان کی اہمیت ہے، لیکن صادق المنصور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیں اہمیت نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے عشق سے ہمیں عشق سیکھنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے عشق رسول میں. آج عشق رسول میں بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن ہماری وضاحت، ہمارے طور طریقے، ہمارا ذہن سہن، ہماری گفتار، ہماری کردار، اگر ہم اپنا سب طریق سے محاسبہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں، آپ کی گفتار، آپ کی کردار کے اور آپ کے فرامین کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. ہمارے ظاہر بھی اکثر کا حال یہ ہے اور ہمارے باتیں کا تو کہنا ہی کیا. تو میرے عزیز اور دوستوں، بات یہ کہنے والا تھا، یہ بات درمیان میں آ گئی، لیکن الحمدللہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نافع ہوگی. اور میرے مرشد شیخ العرب الرجب آئے جیسا مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کانوں تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے. کانوں تک پہنچ گیا، علم حاصل ہو گیا، علم کا نور آ گیا، ابھی عمل نہیں ہوا لیکن علم کا نور آ گیا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. گناہ کا احساس ہو جانا، مثلا نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ تصویر میں بھی جرے سے جائز نہیں ہے، اور تصویر جس گھر میں ہوگی یا کتا گھر میں ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں. ایک چیز کا علم ہو گیا، شریعت کے مسئلے کا علم ہو گیا، اس علم کا نور ہر مومنٹ کے دل میں ضرور آتا، اور اس کا فائدہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو مرنے سے پہلے پہلے کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ آدمی توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر لے گا، خدا تعالیٰ سے معافی تلافی کرا لے گا. تو یہ کیا بڑی نعمت ہے، گناہوں کا معاف ہو جانا، ان کا بخش دینا. ہاں مسئلہ تو یہی ہے سارا جو شروع کر سکتے ہیں کہ اس زندگی کا ہمیں جتنے جس کی حقیقت کا ہمیں اندازہ ہے، آنے والی زندگی کیونکہ سامنے نہیں ہے تو اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کا خیال نہیں. میرا اس سے پہلے حیدرآباد آنا ہوا تھا تو ہم یہاں چلے گئے تھے رانی باغ میں، ہم سمجھے تھے کہ یہاں بڑے انوکھے جانور ہوں گے، بہت مشہور تھا کراچی کرنے والے، تو देखा तो यहाँ अब जो चीज याद रह गई है उसके तक बहुत याद रह गई उसके तक बहुत ऑस्ट्रिच। तो ये परिंदा जो है या जानवर जब कोई खतरा देखता है उसके बारे में मशहूर है ये भागता नहीं है बल्कि जब खतरा अगर घर पे देखता है तो फौरन अपना मुंह रेत में घुसा देता है जिससे इसकी आंखें वगैरह सब टूट जाती है और ये समझता है कि खतरा टल गया। आज में पता करने से खतरा टलता है लिहाजा हम कितनी भी गफलत कर लें आज में रखते यौम महशर से कितनी भी गफलत कर लें लेकिन हम उस वक्त से बच नहीं सकते। खुदा ताला के सामने पेश होने से हमें कोई चीज नहीं बचा सकती हत्ता के अगर अपने दीन की सल्तनत सातों जमीन और सातों आसमान के खजाएं आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दें कि हमें जरा सी मोहलत दे दी पैदा जा अजलो इरा जा अजलो लाया सख्त होना सात अंक लाया सख्त कि जब अजल आ जाएगी मौत आ जाएगी एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं। अब आप सल्तनत डाल दीजिए उनके कदमों में कि हमने वही बड़ी मकलत गुजारे गलती हो गई हमसे जरा दो मिनट तीन मिनट हमें दे दीजिए जब कम से कम अल्लाह से माफी मांगी मिलेगा भाई तो नहीं मिलेगा तो देखो जबान पे है गर्दन हिल रही है हमारे लेकिन दिल में मुबाद है। अगर दिल में मुबाद होती तो आज हमने से किसी का अमल फिलहाल रिश्वत और शरीयत होने का सवाल ही पैदा बस इस बात का पहले यकीन दिल में हमें बिठाना है कि बात क्या तक और ये तो मुश्किल बात है अपना काम जब प्यारे है अपन से सोचे अजीब उलूमत रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के बड़े बुजुर्गों में है जिनकी बयोसी देवर भी है मशहूर सस्ती और बहुत सारी तजानी है बड़े बुजुर्ग मुजद्दिद थे और बड़े उलमा के बीच थे हिंदुस्तान में। आप फरमाते हैं कि तबीयत पर अमल को वाले करो और अमल पर शरीयत को वाले करो तबीयत पर अमल को वाले करो और अमल पर शरीयत को वाले मेरे अजीजों और दोस्तों आज हमारी ये बड़ी शर्मनाक मामला है कि हम अपने दीन से बहुत दूर हो चुके हैं इस वजह से हमें दीन की अहमियत नहीं जबकि हमारे दीन ने हमारे दुनिया का भी ख्याल रखा है और आखिरत का भी ख्याल दुनिया को लात मारना हमारा दीन नहीं है दुनिया को छोड़ देना रहमानियत इख्तियार कर लेना हमारा दीन नहीं है। फरमाते हैं कि अगर पानी न हो तो कश्ती चल नहीं सकती कश्ती चलाना है तो पानी का वजूद जरूरी है लेकिन तरना इतना है कि पानी जब उपी रहे कश्ती के लिए जब पाए पाए और जैसे ही पानी कश्ती के अंदर आना शुरू कर देगा तो कश्ती की हलाकत का पाए बस दुनिया जरूरी तो है। अली सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब दुनिया मत रहा तो रात है दुनिया आखिरत की खेती है और मेरे मुर्शिद खुद के जमा आरिफ बिल्लाह मौलाना शाह अब्दुल मजीद साहब आखिरकार फरमाते हैं कि दुनिया में रहकर जन्नत को आबाद करो दुनिया में रहकर जन्नत को आबाद करो ये दुनिया प्रॉपर्टी बनाने के लिए है लेकिन वहां प्रॉपर्टी हम अपनी वहां बनाए वो है आदमी अकलमंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल बिमा बाद अल-मौत والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عقل من آدمی وہ ہے جو جلدی جلدی اپنی آخرت کو سمیٹ رہا ہے یہ دنیا رنگینیاں اٹھانے کے لیے نہیں ہے ایش و عشرت کے لیے نہیں ہے ہمارے سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں لطف دنیا کے ہیں کیفیت کے لیے کون جنت کے مزے ان کے لیے یوں کیا تو نے تو اے نادان تو نے بھول دیے ان کے لیے ایک دن دنیا چھوٹنے والی ہے یہاں کے سارے مزے چھوٹنے والے ہیں سارے رشتے چھوٹنے والے ہیں قبر میں جانا ہے اور ہمارے لیے رنگینیاں بہت ہیں
हमारे लिए रंगीनियां हैं, हमारे लिए ऐशो इशरत है, हमारे लिए शराबें, हमारे लिए कबाबी। अरे भाई जन्नत क्या है? हमारे लकी मलुमत रहमतुल्लाह फरमाते हैं जन्नत क्या है? छोटी सी खुदाई होगी, खुदाई जो चाहा अल्लाह इख्तियार देने के कि जो चाहो यहाँ जो तमन्ना करो वो तुम्हें मिल जाए, जो तमन्ना तो बया एक खुदाई हो गई, ये चाहिए वो आ गया, ये चाहिए वो आ गया। तो हमारे लिए रंगीनियां हैं, मजे हैं, शराबे भी हैं, टोड़े भी हैं, और इतने मजे हैं वहां कि अल्लाह ताला हदीस के कुर्सी में इरशाद फरमाते हैं आदत इबादी अस्सालिहीन माला आइनुन रहत वला उज़ुन समिअत वला खतरा अला कल्बी बशर। मैंने अपने नेक और सालेह बंदों के लिए ऐसी ऐसी नियमतें जमा कर रखी है कि जो किसी आंख ने देखी नहीं, जो किसी कान ने सुनी नहीं, और जिसका गुमान भी किसी पल पर नहीं गुजरा, किसी दिल पर उसका गुमान भी नहीं। अल्लाह के वादे से हमें अफसोस है कि तवज्जो नहीं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी, माहौल से मखलूक हो गए, मुतासिर हो गए, तो उसकी तकदीर यह है यार गालिब जो किताब गालिब चली यार मखलूका मशो ही है मतलबी। ये गालिब लोगों में रहो जो अपने नफ्स पर गालिब आ चुके, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह रसूल की मानकर करते हैं, अपने नफ्स को उन्होंने गुजर रखा है और अपने नफ्स के ख्वाहिशात पर नहीं चलते। अल्लाह ताला फरमाते हैं फवाइद मन इस्तफा इलाहु हवा, क्या आपने नहीं देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिशात के नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के नफ्स का गुलाम बना रखा है, गुलाम बना हुआ है, तो नफ्स को हमने अपने ऊपर गालिब किया हुआ है, नफ्स से मगलूब हुए थे। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है कि जो लोग अपने नफ्स पर गालिब आ चुके हैं, एक कुएं के अंदर 20 डोले गिरी हुई है, रस्सी टूट गई, पानी निकालने वाली रस्सी टूट गई, डोला लग गए, 20 डोले जमा हो गए, मिलकर कोशिश करें बाहर निकल सकती है? कभी नहीं निकल सकते। तहखाने के अंदर तहरी है, वो मिलकर कोशिश करें डगले को तोड़ सकते हैं? नहीं। बाहर से कोई आता है वो कैद को तोड़ता है और उनको आजाद करता है, बाहर से कोई डोल आती है वो कुएं के अंदर डाली जाती है और उसने खंडा बना के दूसरी डोलों को निकाल जाता है। तो जो लोग दुनिया की मोहब्बत में फंस चुके और ये भी सुन लीजिए कि दुनिया किसको कहते हैं, हमारे सिलसिले के बुजुर्ग फरमाते हैं कि चीज दुनिया अल खुदा हाफिज खुद मैं कुमाशो ना करो कर। दुनिया क्या चीज है? अल खुदा हाफिज खुद, अल्लाह ने मकसद का नाम दुनिया है, इसको समझ लीजिए। फरमाते हैं कि चांदी सोना के खजाने और माल दौलत के खजाने और बीवी बच्चे और वालिदैन और घरवार ये दुनिया नहीं है, इसलिए कि अगर ये मलूक होगी तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर बच्चे उनको लगाने के लिए चाहना सकता है। इसी तरह और भी पैगंबर है और इसी तरह और भी औलिया भी हैं जिनको अल्लाह ने खूब माल दिया, ये कैसे जमा हो गया? तो आपके पास माल आ जाए तो ये मतलब नहीं है कि आप दुनियादार हो। दुनियादार वो है जो अल्लाह से बात है और दुनिया वो चीज है जो अल्लाह से बात नहीं करता है। तो माल का होना दुनियादारी नहीं है, एक आदमी मालदार है और धनी है और वो अल्लाह से बराबर नहीं करता, अनेक रास्तों से खर्च करता है, अल्लाह के दिव्य माल को गुनाहों से खर्च नहीं करता। ये भी है स्मार्टफोन की गंदगी किया है और पता नहीं क्या क्या खराबा है, नाच गाने और खिलाफ शरीर प्रतिवाद और खिलाफ इशारा लिबास, इन चीजों में खर्च नहीं करता बल्कि वो हर मौके पर अल्लाह और रसूल का मकसद देखता है, ये अल्लाह वाला है। माल के साथ ही अल्लाह वाला है, जिस आदमी के पास माल नहीं झोपड़ी में रहता है, लेकिन देखो आजकल तो झोपड़ियों में सेकंड क्वार्टरों के अंदर कुछ होना हो, रोटी खाने को ना हो, पाते हो रहे हो, भीख मांग रहे हो, सरकार मांगते कर रहे हो, लेकिन केवल जरूर लगा, केवल जरूर लगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, पेट में रोटी नहीं है। ऐसे को सरकार देना भी जाए बना है। तो मेरे दोस्तों जो आदमी मान न होने के बावजूद फकीरी के अंदर गुनाहों में मुबतला है ये पक्का दुनिया रहा है, लिहाजा गुरबत और मालदारी का विरायत से ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कुरान पाक की आयत, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन औलियाहू इल्ला मुत्तकून, मेरा कोई दोस्त नहीं अल्लाह का इलाज है, वली माने दोस्त। अल्लाह ताला अभी फरमा रहे हैं हर शोबे की मेरा कोई वली नहीं है मगर मुत्तकी, मुत्तकी मेरे दोस्त है, जितना मुत्तकी उतना बड़ा वली। अब मुत्तकी कौन है भाई, ये भी हमारे यहाँ बड़ी गलत फहमियाँ हैं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें कसूर हमारा अपना है, कसूर यह है कि हम जीत से दूर हो गए और जाली गिरों के चक्कर में हम पड़ गए, कब्र परस्ती में पड़ गए, कब्रिस्तान में जाने लग गए, औलिया अल्लाह से मांगने लग गए, जो अल्लाह वाले हैं उनकी सोबतों से दूर हो गए। और इस जमाने में तो ये जदीद जमाना ऐसा आ गया है कि इसमें ये मीडिया जिसको हम जदीद में कहते हैं ये क्राइम, ये इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया की मालूम खबर आने और फनून तरह तरह के फन, पेंटिंग का फन, कटिंग का फन, पकाने का फन और पता नहीं क्या क्या फोन, हेयर कटिंग का फन और क्या क्या फन होते हैं, इससे पता नहीं क्या क्या फनकारियां होती हैं। और सबसे बड़ी फनकारी इसमें यह हो रही है कि आप चीजों को खराब किया जाए, खुदा की कसम इससे खतरनाक कोई चीज नहीं। मेरे मुर्शिद को सलमा आले बिल्ला हरत फरमा शाह मदीन दादा बरकातहु फरमाते हैं कि गुनाह अकीदे के मुकाबले में हल्की चीज है, गुनाह बहुत संगीन चीज है। ये नहीं कह रहा हूं कि गुनाह हल्की चीज है, ज्यादा खुली छूट दे रहा हूं। अल्लाह ताला हमें मामूली से मामूली गुनाह से भी अपनी पना दे रहे हैं, गुनाह बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन समझिए इस बात को कि क्यों फरमा रहे हैं कि अगर अकीदा खराब हो गया तो हमेशा हमेशा जीत जाता, वहां से कभी छुटकारा नहीं। और गुनाह से गुनाह कर लिए, बहुत गुनाह कर लिए तो है तो बहुत सकीन चीज कि वहां की आग यहाँ की आग से 70 गुना ज्यादा है, बहुत बर्दाश्त कर सकता है, जो यहाँ की गुना आग नहीं बर्दाश्त कर सकते वहां के लिए करें। लेकिन कभी ना कभी ईमान की बदौलत इस शख्स को कितना भी गुना कर रहा हो खुदा ताला इसे जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में डाल देंगे। ये कलमा और दौलत हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जन्नत का गोहरा मुफ्त टिकट अल्लाह ने हमें दे दिया। वो मेरे अजीजों और दोस्तों इन ईमान की कदर और इन बातों की कदर आंख बंद हो गई मालूम हो जाएगी, लेकिन आंख बंद होने के बाद इसकी कदर का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि हर इब्राहिम अलैहि सलाम के कदमों में हम कोई दौलत डालते तो एक लम्हा भी उनको इजाजत ही नहीं है, वो मुख्तार नहीं है अल्लाह की तरफ से मामूर, एक लम्हा भी आगे भी नहीं कर सकते हो। इसी तरह यौम महशर में अल्लाह ताला के कदमों में सारी अपनी सरदारी ले जाकर डाल दो, अपनी वडेरी डाल लो वहां जाकर, अपनी जागीरदारी डाल लो वहां जाकर, अपनी सल्तनत जो कुछ है सब जमा कर दो कि अल्लाह ये ले लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। अच्छा माफ नहीं करते, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब ही देती हमारे नाम मिले बनने के बाद है। पर मैं दुनिया दारुल अमल है बदला, वहां आखिरत दारुल जज़ा है, यहां अमल है बदला नहीं है, वहां बदला है अमल। तो मेरे दोस्तों हम आखिर से सोचे, यही बात हमारे बुजुर्ग ने फरमाई थी, तबीयत पर अमल को वाजिब करो। अमल क्या कहती है हमारी, खुदा और रसूल को राजी करने में फायदा है या अल्लाह के दुश्मनों को राजी करने में फायदा है, अमल से काम लो। अब जब ये फैसला अमल कर रही है कि नहीं भाई जाना अल्लाह के पास है, हम तो कुल हाजिरी है, मुखालिफ है, कुदरत वाले हैं और इस्लाम के काम के वो मालिक हैं, तो भाई उन्हीं को राजी करने में फायदा है भाई। अकल तो रहती है, बात समझ रहे हैं आप, उर्दू समझ में आती है। अच्छा ऐसे लोगों से तो हम पूछते हैं और उर्दू बोले यार हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी दवा हमको आती है तो अपन क्या फैसला कर रही है कि खुदा और रसूल को राजी करने में फायदा है। अब इस पर शरीयत को वालिद करो, शरीयत को वालिद करना क्या है कि सारा जहां नाराज होगा वहां चाहिए, पेशे پھر اس نظر سے جان کر یہ وہی عقل آ گئی اس نظر سے جان کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہیں چاہیے. جب عقل سے جان لیا کہ کس کو راضی کرنے میں فائدہ ہے تو پھر اب کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے کیا کیوں شریعت شریعت ہمیں بتلاتی رہے کہ کیا باتیں اللہ کو پسند ہیں کیا باتیں اللہ کو ناپسند ہیں. اور خدا تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے مالک سر سے لے کر پیر تک ہمارا بال بال ان کا غلام ہے. یہ آنکھوں کی غلام یہ کان کی ان کی غلام یہ ناکوں کی غلام یہ زبان کی ان کی غلام ہے کوئی چیز ہماری ان کی غلامی سے باہر کوئی چیز ان کی غلامی سے باہر ہے. میرے عزیز اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ان چیزوں کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا نام شریعت اور ان کی ناپسندیدہ باتوں سے رک جانا یہ شریعت. تو میرے عزیزوں اور دوستوں اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کیا ہم بھی فکر بن جائیں. ہم فکر بہت بنے ہوئے ہیں. ایک کبوتر کا بھی سچا میں سناتا رہتا ہوں اپنی آنکھوں دیکھا جیو رہا ہے. گھر میں ہمارے کبوتری پلی ہوئی تھی وہی رہتی تھی. بہن میں ایک دن پہل رہی تھی تو دیکھا کہ محل پر ایک بلا یا بلی آ گئی. جیسے ہی اس کبوتر کبوتری نے بلی کو دیکھا تو بالکل سر پہ آ گئے تھے اور وہ دانا چک رہے تھے. اچانک اس کی نظر اس بلی پہ پڑ گئی یا بلے پہ پڑ گئی. ہم نے تحقیق تو نہیں کہ وہ بلی تھی یا بلّا تھا نسبت کی بات. تو اچانک اس کبوتری نے بجائے پر پڑھانے بجائے اوڑنے کے حالانکہ پڑھ بھی نہیں لیکن وہ اوڑی نہیں. اس نے میری آنکھوں کے سامنے کا یہ بات ہے ایسی وہاں کی بند کر اور بلی نے آ کر اچانک اس کو دبوچ لیا اور بڑے مزے سے اس کو اپنا شکار کر کے لے لیا. تو میرے دوست کو قوم بھی اسی طرح اچانک آنے والی ہے نہ جانے کو لانے کیا کڑی ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ اچانک چلے جاتے ہیں ہر عمر کے لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارے یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو وہ ہم آج ہی بات کر رہا آج ہم سب سے لے کر پیر تک ہو کے بلانا. تو اگر وہ شریعت کو ہم پر لاگو کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی انعام کوئی بدلہ نہیں رکھتے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے اگر تمہیں ہماری فرما برداری کرنی کرنی مجبور ہیں تو ہمارا ہم کچھ کر لیتے اللہ ہم کچھ بگاڑ کر لیتے ہیں. لیکن میرے اللہ کی کیا مہربانی ہے کہ فرماتے ہیں کہ من حمل الصالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بھائی آپ بس آپ بد نہ کریں آپ بد نہ کریں. ہمارے بڑے دور سے کل رات کے جاگے ہوئے ہیں ہاں شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سو سکے تو ہم پر مہربانی کریں آنکھ کھول کر ہم پر توجہ دیں. آپ کی توجہ اور قلم کی برکت سے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مفید بات کہنے کی توفیق دیں گے اور ہمارا آپ کا دونوں کا بھلا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے فرماتے ہیں منع کے رسوان ہمیں اندر کر لوگوں کا اور وہ مؤمن فلنوں ہی ہم نو حیا سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان والا مرد ہو یا عورت ایک عمل کرے اور عمل کرے گناہوں سے بچے ہم اس کو ضرور سے ضرور بالغ سے صحیح رہے. بتائیے کتنی مہربانی ہے اگر وہ کہتے ہم کچھ نہیں لیں گے صرف دو روٹی دیں گے دو کپڑے دیں گے اور چھت بھی بڑھائے نام دیں گے کسی پیڑ گرم کی چھاؤں سے تم بیٹھ جانا باقی تمہارا کام ہماری سب میں برداری کرنا آپ کیا بگاڑ رہے تھے اللہ. پھر بھی ہم اللہ کے واپس اچھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانیاں فرمائی ہم ضرور سے ضرور اس کو بالغ زندگی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں آیا کے در کچھ یہ مسجد مست و شاد آیا کے در باغ دل جو نہ ہو رہا. ایک آدمی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر خدا تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے ایک اللہ والا ہے اس کے قلب کے اندر خدا تعالیٰ کے خوب کے گلستان کی گلیاں ہیں اس گلستان کی خوشبوئیں ہیں وہ چین اور امن سے بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے بتائیے کہ بیٹھا ہے کل انہیں اس کے سکون ہے. اور ایک آدمی باغ میں بیٹھا ہے نوکر ڈاکر بھی ہے जो रोजा है और मान दौलत के ढेर लगे हुए और अकाउंट में खटाखट कंप्यूटर की तरह बैलेंस आ रहा है, अब ये जमा हो गया, बोला से जगह से डॉलर आ गए, माना जगह से पाउंड आ गए, बोला माल लिख गया रुपया आ गया, देख रहा है कि मेरा बैलेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। और मगर जाकर जो हो गए सलामियां जो मिल रही है, लेकिन दिल गालिब का और सब हो बीच में। मेरे को शिक्र हमारे फरमाया करते थे कि जो लोग अमरीका बरतानिया और मगरबी ममालिक की तरक्कियों पर लालच करते हैं, हिरस करते हैं, वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं आजकल लोग, तो फरमाते हैं कि उनकी तरक्कियों पर लालच मत करो। जालमों ने आज तो ऐश से गुजरती है, आखिरत की खबर खुदा जाए। फरमाए थे दुश्मनों को ऐसे आबो गिर दिया, दुश्मनों को ऐसे आबो गिर दिया, दोस्तों को अपना घर दे दिया। अल्लाह के दुश्मनों को ये पानी मिट्टी की चीजें, मिट्टी के खिलौने, सोने चांदी और मिट्टी की बिल्डिंगें, बताओ कोई चीज मिट्टी के अलावा भी कैसे निकलती है? सोना तांबा चांदी कोई तो चीज बताओ जो मिट्टी के अलावा कैसे निकलती है? सब कुछ जमीन से बरामद होता है। और मैं कि दुश्मनों को ऐसे आगो दे दिया, दोस्तों को अपना दर्द दे दिया। उन जालिमों ने सरकशी की इंतहा कर दी तो गवर्नर ने उनका यह आदान मुसलत कर दिया कि उनको इस पानी और मिट्टी की चीजों में खिलौनों में मशगूल कर दिया ताकि उनकी सरकशी और बढ़ जाए। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजरें दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तरह और किसी अल्फाज एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिरों को एक घोट पानी भी ना देते। दुनिया की भी हकीकत चीज है जिसकी हम लालच कर रहे हैं, हमारी जबानें लटकी हुई है उनकी तरक्की पे, उनके माल दौलत। तो मेरे अजीजों फरमाते हैं कि उनकी दौलत और लालच में दौलत और ऐश और इज्जत में रश करने वालों को, लालच करने वालों को जाकर जरा उनका हाल देखो, खुशखुशियों के पॉइंट बने हुए हैं, सुसाइड पॉइंट बने हुए हैं कि यहाँ आकर आप खुशखुशी कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालिया मैनेजर और डायरेक्टर और फलां साहब और फलां साहब जाके वहां खुशखुशियां करते हैं। अगर माल दौलत में चैन होता तो खुशखुशी करते। अल्लाह ताला का ऐलान है अल्लाह तेरे के अल्लाह ही रखना है तो खबरदार अल्लाह ही के जिक्र में, अल्लाह ही के जिक्र में, अल्लाह ही की याद में फरमाया ही लगाना जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की याद से इत्मीनान होता है, ही लगाओ अल्लाह, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान होता है। इसलिए एक आदमी मस्जिद की कटाई में बैठा है, देखो माल का मकसूद क्या है, सुकून आते बंगला हासिल करना, सुकून ताकि आराम से। पर मैं दुनिया की हर हरकत की जिंदगी की हर हरकत का इंसान का मकसूद सुकून होता है। और जब एक आदमी को खुदा ताला बगैर मालो दौलत के सुकून दे देता है, अब बताइए क्या जरूरत है? खुदा के मुल्क में खाने को बला जाए कम है। तो मेरे अजीज और दोस्तों इन बातों की हमें फिक्र की जरूरत है कि हम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए दुनिया में आए हैं। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे लिए बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, दुनिया की लड़कियां क्या है, मिट्टी है, खुदा की कसम जो जैन से अल्लाह ताला ने वहां जमा कर रखी है। फला ताला अल्लाह ताला ऐलान करता है कि कोई नफ नहीं जान सकता कि हमने उनकी क्या क्या आंखों की ठंडक वहां जमा कर दी। बस एक इम्तिहान है मेरे दोस्तों जो आंखों के सामने नहीं, एक पर्दा है आलम रैत पर, एक पर्दा है, यही हमारा इम्तिहान है। अल्लाह ताला कहते हैं उन पर बगैर देखे ईमान लाना, उनकी बातों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर बगैर देखे ईमान लाना, यह है ईमान। अगर अल्लाह ताला सब चीज जाहिर कर दे सब दूध से दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई भी काफिर ना रहेगा दुनिया में। खुदा ताला को दिखलाना मकसूद है कि हमारे आगे क्यों और क्या नहीं करते, वजह नहीं पूछते कि ये क्यों है, क्या है, कहाँ है। ये आजकल स्मार्टफोन और ये यूट्यूब, मैंने थोड़ा भी अर्थ किया था जुम्मे के बयान में कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब यूटर्न होता ना सड़कों पर यूटर्न, तो ये यूट्यूब जो है ये जन्नत की तरफ से हमारा यूटर्न है जहन्नम की तरफ। या हमें ले जा रहा है जन्नत की तरफ, क्योंकि यूट्यूब पर दीन सीख रहे हैं, व्हाट्सएप पर दीन सीख रहे हैं, फेसबुक से दीन सीख रहे हैं, बड़े बड़े बदमाशों ने गाड़ियां रखी हुई है और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी अकीदत खराब कर रहे हैं। एक चोर डाकू गाड़ी रखते हैं तो क्या वो अल्लाह वाला है, उससे आप दीन सीख लेंगे? ये तो नहीं है भाई, पायलट पहले जाने के वाकई एक तो है, रोजा तो नहीं, रोजे वाला तो नहीं। बड़े बड़े बच्चे मालों ने गाड़ियां रखी हुई है और बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं, बड़े ये काम हो रही है उनकी खुफिया तरीके से कि किसी तरह मुसलमानों को गुमराह किया जाए। तो मेरे अजीज और दोस्तों, मेरे मुर्शिद रहमत वाले समाजा जी के हर चीज उसके वाले से मिलती है, हर चीज उसके वाले से मिलती है, आम मिलता है आम वाले से, अमरूद मिलता है अमरूद वाले से, और दूध मिलता है दूध वाले से, कपड़ा मिलता है कपड़े वाले से। तो अल्लाह किससे मिलेगा? अल्लाह वालों से मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा, फेसबुक से मिलेगा, व्हाट्सएप से मिलेगा। हमारे अल्लाह पे पत्थर पड़ गए हैं कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां दीन को सीखने में खपा दी है, उनसे दीन सीखने बचत के बजाय आज औरतें हमारी इमाम बन गई हैं। औरतों से दीन सवाल क्या तकलीफ की है, क्या दलील की है, वाकई अच्छा इस्लाम में कर्ज को भी कोई इतना मसला नहीं है कि तो मौलवियों ने बड़े मौलवी बड़े सन नजर है, सन नजर बड़े सच्चे करते हैं, मौलवी बड़े सन नजर है, ये अनपढ़ है, ये जानते नहीं है। हाँ नहीं जानते, वो मेरा शुभ नहीं जानते, लेकिन वो वहां की खबरें जानते, जानते जाना यहाँ की खबरें नहीं जानते, वहां की खबरें जानते, काम की खबरें जानते, हुजूर खबरें नहीं जानते। जैसे तो दोस्तों मौलवी तन नजर नहीं है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं मौलवी तो बढ़ती बच्ची नजर है, तालिबान तुम्हारी नजर तो सिर्फ दुनिया तक जाती है, बंगला कमाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, गुलाम गुलाम सोना, तुमने आप जहाँ जाना है आप मौलवी अंजाम अंजाम से नजर रखता है, तुम्हारा अंजाम क्या होता है, नजर तक क्यों हो, तुम्हारी नजर दुनिया तक मांगी और मौलवी की नजर आप दोस्तों। अब कितना वक्त रह गया बस है, अच्छा आप लोगों की चेहरों के थकन के आधार देखिए, मैं भी मुझे भी थकन हो रही है, मेरी थकन और कर रही है कि तू भी थका हुआ है, मगर यार तो अल्लाह के वादों पर हमारा ईमान होना यकीन। एक सियासतदान ने, एक सियासतदान के बच्चे ने उस सियासतदान से कहा कि अब्बा मुझे भी सियासतदान बना दो। उसने कहा कि बेटा ये लाइन अच्छी नहीं है। कहा नहीं अब्बा मुझे सियासतदान बना दो, क्योंकि मैं देखता हूँ सुबह शाम आपको सुरुट मिल रहे हैं, डबल के गाड़ी में आप पोंपों और सायरन बजाते हो, उधर बजाते चले जा रहे हैं, पीछे शॉट जा रही है, आगे पुलिस मोबाइल जा रही है, लोगों की सलामी आपको मिल रही है, कुर्सियाँ आपकी अभी कुछ शान है, उधर वहाँ हुआ आज उधर दावत आज सुना उतना, ये इतनी खुशहत जिंदगी है, इतनी बेहतरीन जिंदगी है। वो तो जानता था अंदर के अंदर हमारा उनकी दुकान ठीक है भगवान, जानता था कि हम कितने आराम हैं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह वाले अपने कल के अंदर सुकून कर दरिया लिए रहते हैं, फरमाया कि शाहों के सरों में ताजे गिरां से दर्द कर लेता है, शाहों के सरों में ताजे गिरां से भारी ताज शाह नौकर हाजम कदम नौकर चाकर एक सल्तनत उसका एक बोझ है उनके सर पे, शाहों के सरों में ताजे गिरां से दर्द का असर रहता है और अहले वफा के सीनों में एक नूर का दरिया रहता है। वो जालिम माना ही नहीं, कहा कि नहीं अब मुझे तो ये चमक चमक बड़ी अच्छी लगती है, मुझे सियासतदान ही बनना है, जब नहीं माना तो बाप ने आज तो मुझे समय ठीक चलो आज से तुम्हारी तरबियत हम शुरू कर दे जी। पहला सबक यह कि बेटा तुम ऊपर मकान की छत पे चले जाओ, दो मंजिला मकान ज्यादा ऊंचा है, दो मंजिला मकान पे चढ़ा दिया और अपना नीचे करे वो सियासतदान का है, और अब बेटे को कहा है कि अब नीचे छलांग लगाओ। अब वो चैलेंज करता है इसलिए हकीकत कैसी बात करते हैं आप, मेरी हकीकत ये हो जाएगी मर जाऊंगा। कहा नहीं मैं हूं, मैं तुम्हें गोद ले लूंगा, मैं हूं ना। कहा अब्बा ऐसे कैसे नहीं है, अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अब चारों ना चार दौलत की लालच, दुनिया की लालच जो है ऐसी बुरी चीज है, वाकई ये तो मैं एक लतीफा बुला रहा हूँ ताकि हमारी आपकी बुरी चीज और
बट ठंडा हो जाता है।
तो दुनिया की लालच ऐसी बुरी चीज है कि अमल जाती रहती है, अमल खराब हो जाती है।
तो उसने बहुत कहा, लेकिन बाप ने कहा मैं हूं, तो उसने कहा चलो भाई ठीक है, अब आए थे वो छलांग लगा दी और अपना जो है नीचे से जनाब से खड़े रहे, गिरे नहीं। हाय अब्बा मेरी हड्डी टूट गई, हाय मेरे जो आपका आपने तो वादा खिलाफी कर डाली, आप तो कह रहे हैं बोल ले लूंगा और आप तो हिरे में थी कोशिश भी नहीं की। कहा बेटा सियासत का पहले सबक है कि अपने बाप के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आज हमारा ये हाल है कि खुदा रसूल की नाफरमानी खुलेआम कर रहे हैं, उनकी बातों पर इस्तेमाल नहीं, कुरान को खोल के देखते नहीं, बुजुर्ग को अल्लाह वालों के पास जाते नहीं। हाँ किसी को बहुत दीनदार बनने का शौक है, लाओ याद करो किसी फला औरत का सुना है कि बयान बड़ा अच्छा होता है, उसका बयान सुन लेते हैं और उन्हें जो है और फला और नगर का बयान बड़ा अच्छा होता है, बताओ चलो वो सुनो। और वहाँ क्या तकलीफ की है, अरे भाई बड़ी शांता, अरे बड़े लोग उसको सुनते हैं भाई, बड़ा स्कॉलर है वो। उन गालिबों को यह उलमा नहीं सीखते नहीं सीखने के, मसला पूछने के लिए उलमा नहीं पूछते और बदमाशों से मसला पूछते हैं जब हर हराम को हराम से हाल में करते हैं, और बदमाशों से मसला पूछते हैं जब औरतों से मसला नहीं करते, औरतों से टांगे भी लगवाते हैं और बदमाशी भी करते हैं, चरण पर भक्ति पीते हैं, उनको हम शाहकार समझते हैं। और मैं ये शाहकार जो समझता है तो भी मत हो, तू ने देखी नहीं सूरत शाहाना रही, तू कभी अल्लाह वालों के पास जाके जो होते थे मालूम हो कि अल्लाह वाले कैसे होते हैं, क्या मोहब्बत रखते हैं दिल में, क्या अल्लाह ताला की मोहब्बत का फजाना उनके दिल में, जरा उनके पास जाके तो सही। हम जाते हैं बदमाशों के पास तो नतीजा क्या हो, हमारे दीन का खराब नहीं होता, दीन बर्बाद नहीं होता। फरमाते हैं बुजुर्ग के न किताबों से न वादों से न जर से पैदा, जर मानी सोना दौलत, किताब से भी नहीं वादों से भी नहीं, याद रखना महज बात सुनने से काम नहीं करता, ये याद रखना है। ये बड़े बुजुर्ग ने फरमाया है ये शेर, और इस बुजुर्ग के इस शेर को एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुदर जमाना हल्की मलूकत हाजी रहमतुल्लाह ने 4000 अपनी किताब में नकल किया। फरमाया किताबों से न वादों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। बुजुर्गों की सोच में हो तू बैठो, जिनके ऊपर खुदा ताला की मोहब्बत और मौत की छाप लग गई है, उनके दिलों को लड़ना बाकी है खुदा ताला के मौत से, उनसे मिलो जाके इन बदमाशों से, ये बात मत जाओ यारे वाले क्योंकि का मालिक शरीर यारे मगलूबा मत हो, मगलूब लोगों के पास माल दौलत के हरीज लोगों के पास मत जाओ, जिनकी नीयतें खराब हैं गंदे जमा करना हजराने जमा करना और औरतों से टांगे दबवाना बदमाशियां करना और हलवे खाना मांडे खाना दिन रात बड़े बड़े स्पीकर लगा के लोगों की नीतें हराम कर देना, मेरे दोस्तों हमारा दीन नहीं है। अल्लाह के लिए हम दीन को अल्लाह वालों से सीखें और अल्लाह वाले कयामत तक खाते रहेंगे। हदीस पाक में है कि जब तक कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में होगा कयामत नहीं आएगी। देखा एक अल्लाह कहने की कीमत, कि जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला न होगा उस वक्त तक कयामत होगा, उस वक्त तक कयामत नहीं। एक अल्लाह कहने की क्या कीमत है, ये सूरज ये जमीन ये चांद ये सारी कायनात उस एक अल्लाह के नाम से पाई। मुर्शिद रहमतुल्लाह ने अजीब बात सुनाए करते थे कि ये कुफार बड़े बड़े दौलतमंद बड़े बड़े हुक्मरान गुरूर और तकब्बुर के कोटले, ये हमारे सपने में जी रहे हैं, हम मुसलमानों के सपने में ये खा रहे हैं, इसलिए कि जिस दिन एक मुसलमान का रहेगा कयामत क्या इसके लिए कयामत से बच जाए, ये पना होने से बच जाए, तो फिर ये हमारे ईमान के सपने में ये कुफार जी रहे हैं, ये हमारे ईमान के सपने में रोटी खा रहे हैं, चाहे लाल तरक्की में हो लेकिन देश विदेश अजाब से भरपूर हो। तो मेरे अजीजों दोस्तों बात काफी अमीर होती है, अब एक मुख्तसर कोशिश करता हूँ कि चार अहवाल हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह तालीम फरमाए। जैसा कि मैंने पहले आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं मगर मुत्तकी, और मुत्तकी के मानिए हैं जो गुनाहों से परहेज करता है। याद रखिए ये भी गलत फहमी में कहते कहते बात मानसून कहीं चला गया था कि हम मुसलमानों में ये गलत फहमी है ये दीन से डरते हैं, समझते हैं कि तरवीब
करानी पड़ेगी, हर बात को छोड़ना पड़ेगा और ऐश्वर्य इशरत को छोड़ना पड़ेगा, मजे सारे कैकेले हो जाएंगे। नऊजुबिल्ला, यह हमारी सारी गलत है। अरे भाई, जो इंसान सुन्नत और शरीयत के मुताबिक खाना खाता है उसका खाना भी इबादत दीन है, जो इंसान सुन्नत के मुताबिक सो जाता है उसका सोना दीन बन गया, उसका सोना सोना हो गया, सोना समझना नहीं। हाँ, और जो आदमी बैतुल खला जाता है सुन्नत और शरीयत के मुताबिक उसका बैतुल खला जाना भी इबादत, जो बाहर आता है सुन्नत शरीयत के मुताबिक उसका बाहर आना इबादत बन जाता है। पानी पीता है इबादत है, सोता है इबादत है, चल रहा है फिर रहा है इबादत है, हस्पा के बीवी बच्चों के साथ हाजी हंसी निदान कर रहा है, चाहे हंसी निदान उसका हंसना भी इबादत है। ये है दीन मेरे दोस्तों, दुनिया छोड़ने का नाम दीन नहीं है, तस्वीर संभालने का नाम दीन नहीं है, मस्जिद संभालने का नाम दीन नहीं है, बल्कि मना है। जिस आदमी के दिल में होने वाले का है बीवी है, अगर बीवी बीमार है और ये आदमी नफिल नफिल पढ़ना है, ये नाजायज है, जिसके लिए नाजायज है तो नफिल पढ़ना, जिसके लिए शरीयत का हुक्म है कि जाओ बीवी की दवा ले जाओ। माँ बाप बीमार है ये चले गए चिल्ले के ऊपर, वो हाजत मन है नियमत के ही चले गए चिल्ले, सब अल्लाह से होता है। मेरे दोस्तों इस तरह निकलना नाजायज है, जाओ उलमा से जाके करवा ले लो, बताएंगे कि इसका निकलना नाजायज है। तो दीन दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है, दुनिया को शरीयत के मुताबिक गुजारने का नाम, दुनिया को शरीयत गुजारने का शरीयत के मुताबिक गुजारने का नाम दीन। तो चार नमाज में जो मुश्किल बताए गुनाहों से परे, इधर हकीकत चार बड़े बड़े गुनाह हैं, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कोशिश करता हूँ कि अर्ज कर दूँ, तो इस पर हम अमल कर लेंगे तो हमारे शहर से जमा हमारे सिद्धा शेख अलहमद अगर मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी इन चार अमल को कर लेगा अल्लाह का वली हो जाएगा, अल्लाह का वली हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि ये दीन पूरे चार अमल का पगड़ी नहीं है, वो एक दूसरी जगह उनको बयान किया जाना है, तो ऐसा मतलब नहीं है, तो पहले से तय हो गया। तो ये पूरे का पूरा दीन नहीं है, लेकिन ये चार अमल ऐसे हैं जो नफ्स पर बहुत भारी पड़ते हैं इंसान। तो जो इंसान हिम्मत करके इन चार अमल पर अमल कर लेगा तो पूरे दीन पर चलना उसको न सिर्फ ये कि इंतहाई आसान हो जाएगा बल्कि मजेदार हो जाएगा। सिर्फ चार काम आप सिर्फ दिल से चार काम कर लें, और अगर आपको ये फायदा ना हो तो मेरा सर आ जाए, जूते आपके और मेरा सर। लेकिन सच यह है कि हम सिर्फ दिल से चार अमल को आप हम पढ़ेंगे तीनों तरफ से एक पक्षी का है, ये एक पुट्टी दाई तरफ से होनी चाहिए, यहाँ से कटिंग भी ना हो। देखो मेरे दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है, लेकिन इसका हुक्म वाजिब है, वाजिब यानी इसके एक पुट्टी से कम काटना या उल्टाना दोनों बराबर है, दोनों हराम है। दाढ़ी का रखना वाजिब, ये गलत नहीं है, हमारे गलत नियमों से भरे हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह वालों के पास नहीं जाते ठीक से, और बहुत से लोगों का मसला मालूम हो जाता है, और उनके दिल में ईमान का उजाला होता है, खुदा ताला की मोहब्बत का खजाना हर इंसान में छुपा हुआ है, जैसे ही मसला मालूम होता है कि मेरे मालिक को ये बात ना पसंद है, फौरन उसको अमल की तौफीक हो जाती है। और जिसको ना हो उसको चाहिए कि घबराए नहीं, एक काम तो ये करे कि खुदा ताला से मांगे, दूसरे काम ये कि हिम्मत करे, थोड़ी बहुत हिम्मत करे, तीसरा काम ये कि अल्लाह हुजूर से दुआ कराए हिम्मत, अल्लाह मुझे हिम्मत दे दीजिए, मैं मखलूक हूँ, माहौल से मुतासिर हूँ, शर्माता हूँ, कहीं मेरी बातें बना देती है डर जाता हूँ, कभी यार लोग बातें बना देते हैं डर जाता हूँ। तो भाई एक तो ये सोच लो कि ये कल हमारे काम आने वाले हैं नशे एक के, कोई बीवी आज तक शौहर के साथ खबर नहीं है, तो ये कोई ये तो हिंदुओं के तरीके हैं, वो चलाते हैं पता नहीं क्या कर सकते हैं, हमारा तो अलहमदा तक कोई अच्छी तरह कोई बीवी इससे शौहर के साथ नहीं है, बीवी की बात के पास कोई दोस्त यार तक की दोस्त की खबर नहीं हो रहा है, कोई माँ कोई बाप अपने बेटे की खबर न करे कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों हम आपस से सोचे कि हमें क्या करना चाहिए, ये वाजिब क्या हो, इसी तरह थोड़ी के नीचे से ये एक मछली हम यहाँ से ना कभी ऐसी मछली ये माया है एक मछली, और ये सब बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे कोशिश की बताई हुई जो है लेकिन तमाम किताबें किताबों में लिखी हुई है, कुरान और हदीस से साबित है। अब तो नहीं इतना कि मैं आपको बदलाऊ, लेकिन ये कि कोई आएगा मेरे पास मैं उसको बदला दूंगा। तो इसलिए इतमान रखिए कि जो बात मैं कर रहा हूँ कुरान और हदीस की बात नहीं है,
तो वही को ध्यान देना पड़े
बल्कि वो चीज यहाँ। अब उसके बाद आप मैं इसे काटते हैं, आज की ताजा तारीख कटी हुई है, लेकिन अपनी तारीख को अपने हाथ से बनाता अगर मेरे साथ और मैंने अपने मुश्किल से तरीका नहीं लिया अगर की दाढ़ी भी नहीं बनती तो हम नाई के पास जाते ही नाई को दाढ़ी दाढ़ी जो है नाई के हवाले करते ही नहीं, अपनी दाढ़ी को नहीं बनाता हूँ अल्लाह मेरे साथ। और पाँच पाँच मिनट है और नाई के पास जाओ तो एक घंटा लाइन में लगो और सिगरेट की बदबू लगा रही है, केबल टीवी अलग कर रहा है, गंदा हो रहा अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हम लोग को ये कहता है कि हमारी दुनिया भी अच्छा और बढ़ता है, पाँच पाँच मिनट के अंदर मैं अल्लाह की दाढ़ी बना लेता। तो मेरे दोस्तों एक फुट की गाड़ी रखने का हम पक्का किया जा रहा है, और अगर किसी भाई को कमजोरी हो नहीं रख पा तो एक काम तो हम करेंगे अल्लाह से रोना शुरू करें, वही बात कि हम तबियत के ऊपर अमल को वाले हैं कि अल्लाह और रसूल की मानने में फायदा है। तो तबियत जा रही है कि गाड़ी रोड रहे हैं लेकिन अमल को वाले करें कि फायदा इसमें है कि अल्लाह रसूल की माने, और अल्लाह ताला से हम रोना शुरू करें कि अल्लाह हमें हिम्मत नहीं होते आप हमें हिम्मत अदा कर दीजिए, और हिम्मत होने के बाद धर्म माना जाना चाहिए। हकी मलूमत फरमाते हैं ना कितना वक्त रहेगा मुझे पूछिए। अच्छा बस फिर मुख्तसर काम कर लेते हैं कि भाई एक के लिए कि एक मुट्ठी गाड़ी हम रख लें इसका रखना वाजिब है, और एक मुट्ठी से कम पर इसका टकराना, एक चावल बनाने भी कम टकराना ये हराम, और मंगाना तो यही हराम। और मुझों को हम बिल्कुल साफ कर लें, हर बनाना हो तो ये उसकी माया भी है कि दोनों चमड़े जहाँ मिल रहे हैं उसके ऊपर का हिस्सा साफ कर सकते हैं। बाजे लोग यहाँ से ले आते हैं, बाजे लोग यहाँ से होगी इसी की तरह जो है वो बना लेते हैं दाढ़ी। सब कोशिशों का तरीका है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फारिग हो मुशरिकीन वस्तगफिरुल्लाह फाग़फिर लहा, मुशरिकीन की मुखालफत करो बालों में छोटी छोटी गाड़ियाँ रखना ये मुशरिकीन की वजह होता है। पहले यूरोपीय से गाड़ियाँ रखते हैं काफिर है लेकिन ऐसी गाड़ियाँ रखते हैं तो परेश्वर के नाम पर हम जानते हैं। तो ये दाढ़ी शारीरिक दाढ़ी नहीं है, मैं बताएगी कि अल्लाह क्या अल्लाह क्या तो तेरे महबूब की याद शबाब लेके आया हूँ हकीकत इसको दूर कर दे सूरत लेके आया हमारा मतलब जाहिर है मुझों को बिल्कुल साफ ये फर्स्ट डिवीजन है मुझों को बिल्कुल साफ कर दे। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है तो इसका भी तरीका शरीयत में जहाँ सख्ती है वहाँ नरमियाँ भी हैं, हम आपको दोनों बातें बता रहे हैं जहाँ नरमी है वहाँ सख्ती भी करें। यह इजाजत है एक किनारा खुला रहे ऊपर के ऊपर सफेद किनारा इससे पालना आने का, अगर इससे पाला गया तो गुनाह कबीरा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही है हक वाला सारे का बोला कि अल्लाह शफा दी मेरी शफा से ही मिलेगी उसको जिसने लंबी मोज रखी। लंबी मोज इसको कहते हैं और को कवर कर ये सफेद किनारा खुला रखिए आप सेकेंड डिवीजन पास हो जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन की बता दिया या तो आपकी मर्जी है आप फर्स्ट डिवीजन चले सेकेंड डिवीजन। तो ये हो गया दाढ़ी का हो हट्टी है कटपटी की जहाँ है जिससे जिसके बाद सभी दाढ़ी में सुधार होगा। तो यहाँ के बाद ही ये पंक्तियों में चले ये देखिए बस उसका आसान तरीका मुझे बता दिया कि तीन तीन हिस्से करें दाढ़ी के और उसको अपनी मुट्ठी में लेकर बाजे हिस्से को काट दें आराम से दाढ़ी हो जाए। गर्दन के बाल भी साफ न करें तो गर्दन के बाल जो बहुत नीचे को नीचे की तरफ भाग रहे हैं नीचे के तो उनको साफ करने की इजाज़त है, जो बाल दाढ़ी में मिले हुए हैं उनको साफ न करें। ये पहला हुक्म हो गया। दूसरा हुक्म ये मर्दों के लिए जब चलते हैं खड़े हैं दो हालतों के अंदर हम अपने टखनों को खुला रखें और औरतों को टखने भागना बाढ़ ये आजकल उल्टा हो रहा है औरतें टखने बोलते हैं मत टखने भाग रहे हैं बुजुर्ग फरमाते हैं लाहौला वाला कुंवर क्या उल्टा कमाना है औरत को है मर्दानी मर्द बनाना है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करता है। तो जब चल रहे हो और खड़े हो दोनों हालतों में टखने से खूब ऊपर रख के पाएंगे चाहे आप मतलब करें लोगी पहने आपकी मर्जी शराई लिबास पहने जो सुभान अल्लाह नहीं तो जो भी लिबास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसका यह हुक्म है कि टखना खुला रखना चाहिए इससे नमाज का हुक्म नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माँ अकबर मिन अलकाबैन मिन अलजिलाल के साथ कितना हिस्सा टखने का ऊपर से आने वाले लिबास से लगेगा जानना में चलेगा। मेरे मुर्शिद फरमा देते हैं कि औरतें भी सवाब हासिल कर सकती हैं अपने शौहरों को अपने भाइयों को अदब के साथ जैसा उनका मर्तबा है उनको तालीम दे सकती हैं कि यहाँ साहब दाढ़ी रख लो कल हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे दाढ़ी रख लीजिए
रसूलुल्लाह की जैसी शक्ल बना ली तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और तीसरा काम वो मर्द और औरतों के लिए आंखों की हिफाजत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह हुक्म नाज़िल फरमाया है, कुल लिल मुमिनीन यगुज़ु मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से फरमा दीजिए कि अपनी बात निगाहों की हिफाजत करें। वजह मयूर गुरु यहाँ और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मेरे मुझे फरमा देंगे कि निगाह की हिफाजत के फौरन बाद शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म इसलिए है कि जो निगाह खराब करेगा उसकी शर्मगाह महफूज नहीं रहेगी। आज इस बदनिगाही की वजह से कितनी जवानियां बर्बाद हो गई। बच्चों के हाथ अपने बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, केबल है, टीवी है, घर में टैबलेट है, गंदी तस्वीरें हैं उसमें, मैगजीन है, गंदी तस्वीरें हैं। आज तो हमारे यहाँ ये जो इस्तेमाल की चीजें आती हैं सर्फ है साबुन है हर चीज में गंदी तस्वीर बनी। हम इन चीजों को निकाले। साबुन खरीदना है आप ले आइए घर में, एक 25-30 रुपए का मार्कर ले लीजिए। आप ये एक ही काम तो आप कर सकते हैं भाई, इसमें तो कोई हिम्मत की जरूरत नहीं। आप ये काम कर लेना हमारा आना बिल्कुल हो जाएगा भाई। ये हर प्रोडक्ट जो घर में आ रही है उसकी जो तस्वीर हो उसको फौरन उस मार्कर से काला करके मिटा दो अल्लाह के नाम पर। ये अल्लाह आपके नबी से हमने सुना है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब इस आपके नाम पर इसको इसका मुंह काला कर देते करेंगे इन शाला ये काम। इसमें तो कोई आपने बाधा ही नहीं बनाया, इसमें गाड़ी क्यों नहीं लगी, गाड़ी क्यों नहीं लगी, क्यों कर दिया तस्वीरों को मिटाए। तो ये आंखों की बदनिगाही की वजह से जवानियां बर्बाद हो रही है। शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबल कदम कदम ऐसे बाहर हुस्न पानी, हजारों कश्तियों का खून है पहले जवानी है, जाके देखो हकीमों के यहाँ लाइन लगी है, वहां बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, एक रात में जवानी वापस होती है जवानी वापस, एक मतलब जवानी चली गई कभी जवानी वापस नहीं आई। आज बेवलादी क्यों कर रहे हैं, शादी के काबिल नहीं है, और औलाद मामूल क्यों पैदा हो रही है, ये कुवत में खराबी आ रही है, बिगाड़ पैदा हो गया। तो मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है दिल आई के अंदर आंखों का जिना है नजर का। देखिए सब कुरान और हदीस की बात है, जिना है आंखों का नजर वाली, नामहरमों को देखना, साली है, भाभी है, सच्ची है, गुमानी है, गलत है, कायदात कदरदार मामूदात, ये सब गलत है। इसी तरह देवर और जेठ शरीयत ने इन सबसे कटा पर्दे का हुक्म बनाया बात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया हाजिर हुई। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं शौहर के भाई से पता करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर का भाई तो मौत है, यानी जितना मौत से डरते हो उस पते के मामले में उससे डरते। मेरे दोस्तों अल्लाह रसूल की बात न मानने का नुकसान नहीं होता, चाहे हमारा दिल कितना कहे कि हमारे ये घर वाले हैं, हमारा रिश्ता है हमारी, लेकिन अल्लाह और रसूल की बात मानने में फायदा है और उनकी नाफरमानी करने में नुकसान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की बद्दुआ फरमाई है, लाअल्लाहु नाज़िर व मंज़ूर इलैह, अल्लाह ताला लानत फरमाए नजर खराब करने वाले। लानत की दुआ, लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से शख्स दूर हो जाता है। लिहाजा निगाह की हम हिफाजत करें नामहरम औरतों से। और ये मोबाइल तो क्या है, पहले टीवी को कहते थे हमारे अंदर के सांपों का पिटारा, ये तो सांपों का एक जंगल लाभ होना ही जंगल है, मनम का सांप है, सांप और नींद फूलदार होता है, कोई बाहर लगाता है कि मेरे दोस्तों सांप से भी ज्यादा खतरनाक आंखों के साथ मोबाइल बच्चे बच्चे को दिलाते हैं। फरमाया कि हमने ये स्मार्टफोन बच्चों को दिला के ये इसको जहन्नम में भेजने का दरवाजा खोल दिया। पसाई हो गए हैं आज के आजकल के माँ बाप, जिस तरह पसाई जानवर लाता है, चलाता फैलाता है, मोटा काटा करके दिवा सकता है या उसको सर पर बिठा है दिवा कर देता है। आजकल हमने औलाद के साथ यही मामला रखा है कि चलो ये कार्टून देख लेंगे या फोटो लेंगे और वो कर देंगे, हमें मुबतला होकर अपनी जवानियां बर्बाद कर चुके हैं, लाखों जवानियां बर्बाद हो गई। अब हकीमों को लाख लाख रुपए के खमीरे पेश करेंगे, लाख लाख रुपए दे दो ये खमीरा दे दो हमको, लेकिन जवानी वापस नहीं आती। और पहले जमाने की औरत सबको आया ये होगी थी, वो सारी जिंदगी गुजार देती थी जबान से न लाती थी सारा मामला, लेकिन आज वो मामला नहीं है।
آج پہلی منٹ وہ اعلان کر دیتی کہ یہ مدد نہیں ہے، یہ قابل نہیں ہے، یہ ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے میرے دوستو آنکھوں کی ہم حفاظت کریں، کیا بڑا کیا چھوٹا سب کا یہ ہو، اور چھوٹا کام کہ ہم اپنے دل کی بھی حفاظت کریں۔ نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے، خلی میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پانا، دل میں بھی نامحرموں کے خیالات کا دل کا لینا ہے، دل کا لینا، دل برباد ہو جائے گا، ایمان چل کے خاک ہو جائے گا، کہیں کہ نہ رہیں گے ہم۔ اس لیے ہم اپنی جانوں پر ذہن کریں، اور اتنے بڑے اللہ والے کی اخلاص سے اور رو رو کر کہیں ہوئی یہ بات، اور اپنے کھا کر میرے شہر رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد کے اندر روزے کے اندر اپنے کھانا ایک اللہ والا سبق کھا رہا ہے، ہم اس کی بات پر اعتماد کریں۔ دوستو یہ چار امان پر ہم عمل کی پوری کوشش آج سے ہم سے اوپر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک دم سے کام نہ کر سکیں، اگر یہ ایک دم کام کر لینا اب نہیں بھائی، جتنا قربانی ہم دیں گے اب نہیں بھائی، نفس کی بات نہ مانیں، ہم اللہ اور رسول کی بات مانیں، لیکن اگر پھر بھی ہم بہت کمزور ہیں لیکن ہم ایک کام ضرور کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کریں، اللہ ہمیں ہمت نہیں، آپ ہمت تو آپ نے دی ہے، ہم اسے استعمال نہیں کریں، اللہ ہمیں استعمال کی توفیق دے۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، آپ حضرات کو بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں، خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں، ایک کام دوسرے ایک سے کچھ ہمت کریں۔ اگر دس دفعہ بدنگری کی عادت ہے، دس دفعہ موبائل کو استعمال کرنے کی عادت ہے، آپ نو دفعہ ایک دفعہ کو چھوڑ دیں، چل یار میں اللہ کے نام پر چھوڑتا ہوں، ان شاء اللہ دیکھنا کہ آپ کا ترقی کا جینا شروع، آپ نے ترقی کے جینے پر صبر رکھ دیا، ان شاء اللہ ہوتا کچھ ہم کوشش کریں۔ دس سال گنا کی عادت ہے، اس کو ایک کم کر لیں، نو کر لیں، آٹھ کر لیں، سات کر لیں، جتنی ہمت ہو استعمال کریں۔ دوسرے یہ کہ کسی اللہ والے کو اپنا سب سزا بتا، جو مخلص ہو، جو نظرانے کا لالچی نہ ہو، چندے معاملے چندے بار نہ ہو، چٹو بار نہ ہو، چٹو بار بہت ہے، ہاں گھیرتے ہیں عورتوں کو گھیرتے ہیں، اب تفصیل کا بات نہیں ہے، چار امال ہم نے بتا دی، اور دوسرا کام یہ ایک تو یہ کہ ہم دعا کریں، دوسرے کہ ہم کچھ ہمت کریں، اور تیسرے یہ کسی اللہ والے کے پاس پابندی کے ساتھ آنا جانا شروع کریں۔ بس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ترقی کے جینے پر قدم رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ترقیات سے کامل نصیب فرمائے، اپنی محبت اور معرفت اور اپنی خیریت ہم سب کو عطا فرمائے، فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے دونوں جہان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم۔ جمعے کے دن یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، ابھی تو معلوم نہیں شاید مغرب کا وقت داخل ہو گیا، لیکن بات ابھی ہے بھی ٹائم، تو بھائی مانگنا چاہتے جو مانگ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حالتیں ہیں، لیکن ایک حالت سب سے بڑی ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، یہ اللہ یہ کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی مجھ سے طلبگار ہے، اللہ آپ میرے ہو جائے جو تو میرا، تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں ہے، آپ ہمارے ہو گئے، ساری کائنات ہماری ہو گئی، سارے خزانے ہمارے ہو گئے، سارا مال ہمارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کو مانگ لیں، اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اور دنیا کی حاجتیں بھی مانگو، دنیا کی جائز حاجتیں مانگنا بھی عبادت ہے، یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ اور عبادتوں کے اندر دنیا شامل ہو جائے قبول نہیں ہوگی، لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ دنیا بھی مانگ لیتے ہیں عبادت، تو ہم اپنی دنیا بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ ہماری دنیا کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، کوئی تو بیماری اللہ اس کو صحت عطا فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو آسان حلال بابرکت ہونے کی نصیب فرما، اور جو محفوظ ہیں ابھی تک اللہ ہم کو ہمیشہ محفوظ فرما، اور ایک بیماریوں سے حادثات سے پریشانیوں سے اللہ ہمیں آپ کے نصیب فرما، اللہ دو جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اللہ وقت مختصر ہے اور ہم بہت ہی کمزور ہیں، اے اللہ جس طرح ایک بچے کی ضرورت کو ابا خود ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا ضرورت ہے، سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، کھانا پینا، روٹی پانی، سب ابا خیال کرتا ہے، بچہ تو کچھ بھی نہیں کہتا اپنے منہ سے، ابا خود ہی اس کے منہ میں لا لا کے دیتا ہے، اس کو پہناتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ اللہ جس طرح بچہ اپنے ابا سے مانگتا نہیں اپنا خود ہی کہتا ہے اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ دو جہان کی ضرورتوں کو ہماری پورا فرما دیجیے، ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، دو جہان کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مال فرما دیجیے، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حالت ہو اے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس جائز مقصد کو پورا فرما دے، فلانا ویسے ادا فرما دے، اور ایسا ہمارے بزرگوں کو جدائے جبھی اللہ فرما ان کی قبر قبول عمران کو منہ سے مکمل فرما، تیرے مشاہد میں درجات کو درجات خود بے انتہا عطا فرما، اور اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے، جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنا مکی اور فرما بردار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما، اور چھوٹوں کو بڑوں پر بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایسا ایمان یقین ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہر آسمان آپ پر فدا کریں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اے اللہ ہماری حال و معلومات کو اے اللہ قبول فرما لے، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے میں مقابل ہوں میں دوست بھی مقابل ہیں، اور اے اللہ یہ مسجد بھی ہے جمعہ کا دن ہے قبل مغرب ہے، وعدہ ہے کہ اس بار اس قوم مبارک وقت میں جو مانگو گے ہم دیں گے، ویسے بھی آپ کا جو وعدہ عام ہے اور اس وقت وعدہ خاص ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والے سنتوں کو ہر ہر مسلمان کو اللہ رد فرما کر اور اللہ سچی قیمت سے اختیار عطا فرما دے، جو وقت جو وقت یہ ہے اے اللہ اس کو خوشی نصیب فرما دے، غموں کو بدل دے خوشی سے، مصیبت کو بدل دے حافظ سے، تنگی کو بدل دے تراکی سے، بیماری کو بدل دے صحت سے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. یہ دعاؤں کو کاٹ دیں آپ کے پاس کیا سکتے ہیں آپ، اور یہاں کسی کو مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو کیا کرے، کوئی ہے چیز آپ کو چلیے کسی کو بھائی کوئی دینی خدمت میں لائق ہو میں حاضر ہوں، مشورہ اسلامی مشورہ ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں، اس سے میرا نمبر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.